Episode 13.
हाँ शहंशाह अंदलुस, जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए ऐसे बाज भेजूंगा जो अभी तक आपने नहीं देखे। शिकार पर ऐसे झपटते हैं कि उसे बचने की मोहलत नहीं देते। जूलियन की अल्फाज लिखने वाले तारीख नवेशों ने लिखा है कि इससे जाहिर होता है जूलियन ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो रैडरिक से इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों को अंदलुस पर हमला करने के लिए उकसाएगा। जूलियन फ्लोरिडा को अपने साथ सेवस्ता ले आया और दूसरे ही दिन वो मूसा बिन नसीर से मिलने के लिए चल पड़ा। मूसा बिन नसीर एहतियात को लाजमी समझता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ईसाई बादशाह किसी दूसरे ईसाई बादशाह पर मुसलमानों से हमला कराएगा। ये एक फंदा हो सकता था। वो अभी जूलियन को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी बेटी फ्लोरा को यहाँ बुला लूंगा, जूलियन ने कहा। उससे पूछ ले, मैं उस शख्स हेनरी से बात करना चाहूंगा, मूसा ने कहा। उसे मेरा कासिद लाएगा। उसके आने तक तुम अपने साथ आए हुए हाकिमों के साथ मेरे मेहमान रहोगे। उसी वक्त एक कासिद को सेवस्ता हेनरी को साथ लाने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान जूलियन ने मूसा बिन नसीर को अंदलुस और रैडरिक के मुतालिक मजीद बातें बताई जो आज तक तारीख के दामन में महफूज हैं। है मूसा, जूलियन ने कहा, मेरे दिल में रैडरिक की दुश्मनी अब पैदा नहीं हुई। ये दुश्मनी बड़ी पुरानी है। तुम्हें शायद मालूम होगा, अंदलुस में गोथों की हुक्मरानी थी। रैडरिक अंदलुस की फौज में जर्नेल था। वेटीजा नाम का एक गोथ अंदलुस का बादशाह था। वो फितरतन नेक इंसान था। पादरियों ने मजहब के पर्दे में खूब दौलत और जायदाद इकट्ठी कर ली थी और वो ऐश और इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। गिरजे गुनाहों के अड्डे बन गए थे और मूसा पोप का हुक्म चलता था। पादरी मनमानी करते थे। चूंकि वो मजहबी पेशवा थे इसलिए रियाया और फौज उनका एहतराम करती थी। बादशाह भी इनके खिलाफ कुछ कहने से डरते थे। माशरे की कैफियत ये थी कि अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब बिल्कुल ही मुफलिस और खलाश होकर रह गए थे। रियाया दरअसल शाही खानदान की गुलाम थी। लोगों से बेगार ली जाती या निहायत कलील उजरत दी जाती थी। रियाया के लिए कोड़े और ऐसी ही कड़ी सजाएं थी जो जरा जरा सी बात पर दी जाती थी। लोगों पर इस कदर महसूलात और टैक्स आए थे कि वो भूखे रहते और बादशाह का खजाना भरते रहते थे। इससे शाही खानदान ऐश इशरत करते थे। वेटीजा तख्त नशीन हुआ। मेरी बीवी उसकी बेटी है। वेटीजा के दिल में मजहब का एहतराम और अवाम की मोहब्बत थी। उसने तख्त नशीन होते ही गिरजों और पादरियों की तरफ तवज्जो दी। गिरजों को इसने गुनाह से पाक कर दिया। फिर उन उम्रा और दौलतमंदों की तरफ तवज्जो दी जिन्होंने अवाम को भूखा नंगा रखकर दौलत अपने हाँ इकट्ठी कर ली थी। वेटीजा ने रियाया को टैक्सों से निजात दिलाकर अमीरों पर टैक्स आयद किए। इनकी जायदादों का हिसाब किताब करके इन पर अलग टैक्स लगाए। इस तरह रियाया खुशहाल होने लगी। मजहबी पेशवा, उम्रा, दौलतमंद, ताजिर और वसी और इस जमीनों और जायदादों के मालिक कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उन्होंने अवाम से जो दौलत बटोरी थी वो अवाम के पास चली जाए। पादरियों ने मजहब को इस्तेमाल किया और फौज को इस प्रोपोगंडे से भड़काया कि शाह वेटीजा मजहब में दखल अंदाजी करके मजहबी पेशवाओं को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। फौज ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी जिसका लीडर रैडरिक था। वेटीजा की वफादार फौज की तादाद बहुत थोड़ी रह गई जो बागियों के खिलाफ ज्यादा देर न लड़ सकी। बागियों को फतह हासिल हुई। पादरियों ने रैडरिक को बादशाह बना दिया। इसने पहला हुक्मनामा यह जारी किया कि वेटीजा को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे वेटीजा को कत्ल कर दिया गया। अंदलुस में एक बार फिर उमरा, आला हुक्काम, शाही खानदान, जागीरदार और पादरी ऐश इशरत में डूब गए। मूसा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमने अंदलुस पर हमला किया तो वहाँ की रियाया अपने अय्याश और जालिम बादशाह और इसके जनरलों के साथ छोड़ जाएगी। हो सकता है फौज भी रैडरिक से बद्दिल हो जाए। अगर तुम्हारी फौज जज्बे और जोश और खरोश से लड़ी तो अंदलुस की फौज जल्दी मैदान छोड़ जाएगी। मूसा बिन नसीर ने अभी तक उसे कोई फैसला नहीं सुनाया था। चार पांच दिनों बाद हेनरी मूसा के खासित के साथ सेवस्ता से आ गया। मौजूद मेहमानों की तरह उसकी खातिर तवाजो की गई, फिर उसे मूसा के पास भेज दिया गया। हेनरी ने फ्लोरिडा के बाप को नहीं बताया था कि उसकी फ्लोरिडा के साथ दीवानावार मोहब्बत है और वह चोरी छुपे मिलते रहे और फ्लोरिडा की जुदाई बर्दाश्त न कर सका, इसलिए इसके पीछे तुले तुला चला गया। उसने जूलियन को अपने तुले तुला जाने की वजह यह बताई, सेवस्ता में उगता गया था और सैर तफरी के लिए गया था। मूसा बिन नसीर को उसने अपनी और फ्लोरिडा की मोहब्बत की और मुलाकातों की और फ्लोरिडा के पीछे तुले तुला जाने की और वहां के मुलाकातों की और इस लड़की के साथ शाह हमदुलस की ज्यादती की ये सारी रुदात सुनाई जो ऊपर सुनाई जा चुकी है। मूसा ने हेनरी से बहुत कुछ पूछा, हेनरी हर सवाल का जवाब देता रहा। इस तरह मूसा ने अपने शुकूक रफा कर लिए। इसने हेनरी को मेहमान खाने में भेजकर जूलियन को अपने पास बुलाया। मेरे भाई जूलियन, मूसा बिन नसीर ने कहा, मैंने तुम्हारी हर बात और दोस्ती की पेशकश पर गौर कर लिया है, अपने सालारों हाकिमों और मुशीरों से सुलह मशवरा कर लिया है। मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा फैसला करने में आजाद नहीं। अंदलुस कोई छोटा सा मुल्क नहीं और अंदलुस की फौज मामूली फौज नहीं। मैं खलीफा से इजाजत तलब कर रहा हूँ, आज ही खासिद को खलीफा के नाम पैगाम देकर दमिश्क भेज दूंगा। तुम्हें जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, फिर भी एक चांद जितना लंबा सफर है, एक महीना या दो चार दिन पहले भी आ सकता है। तुम चले जाओ, 25-26 रोज बाद आ जाना या मैं तुम्हें इत्तला देकर बुलवा लूंगा। मूसा ने जूलियन को रुख्सत करके कातिब को बुलाया और खलीफा के नाम एक तवील पैगाम लिखवाया। जूलियन की राम कहानी तफसील से लिखवाई। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, जो सही मानों में मर्द मोमिन था। इस्लाम को समंदर पार पहुंचाने के जज्बे से वो सरशार था। इन्हीं दिनों मोहम्मद बिन कासिम को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हिंदुस्तान भेजा था। हज्जाज बिन यूसुफ इसका दस्तराज था। मूसा ने जूलियन की तमाम बातें लिखकर खलीफा को लिखा। ये तो एक इत्तेफाक है कि जूलियन एक तनावर दरख्त से कटे हुए टहनी की मानिंद हमारी झोली में आ गिरा है। मैं अपनी बात इन अल्फाज में पेश करता हूँ कि एक अरसे से मेरी नजरें अंदलुस की तरफ उठ रही हैं। इस्लाम का पैगाम मिस्र और अफ्रीका के साहिल पर आकर रुक गया है। मैंने कई बार तकबा के साहिल पर खड़े होकर अंदलुस की तरफ देखा है और समंदर का सीना चीर कर अंदलुस पर हमले के मंसूबे बनाए हैं। अब एक ईसाई हुक्मरान ने तावुन की पेशकश की है तो हर पहलू पर गौर करके मुझे अंदलुस की तरफ पेश खदमी की इजाजत दें। एक और पहलू पर भी गौर करें, मेरे पास जो फौज है वो तकरीबन तमाम की तमाम बर्बर है। बर्बर वहशी और खूंखार कौम है। इनकी फौज को मैंने नज्म नस्क का पाबंद बना दिया है, लेकिन ये चैन से बैठने वाले लोग नहीं। जंग व जदल इनका फितरी तकाजा है। सरकशी पर ये आमादा और तैयार रहते हैं। इन्हें ज्यादा अरसे तक नज्म व नस्क और कवायद जवाबित की लगाम नहीं डाली जा सकती। इन्हें कुछ अरसा और इसी तरह फारिग रखा गया तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे। ये कवायद और जवाबित से बागी हो जाएंगे और ये इस्लाम से भी बागी हो सकते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं इन्हें सेवस्ता पर हमलों मुहासिरों वगैरह में मसरूफ रखता रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से ये सिलसिला भी बंद है। अब जरूरी हो गया है कि इस बर्बर फौज को कोई मैदान जंग दिया जाए ताकि ये दुश्मन का और अपना खून बहाने का नशा पूरा कर ले। इस नशे के अलावा एक वजह और भी है, इन्हें मोमिन और मुजाहिद बनाने के लिए भी जरूरी है कि अंदलुस का रुख किया जाए ताकि लोग कुफ्रिस्तान में जाकर फतह हासिल करें और इस्लाम को फरोग दें। इस तरह इस्लाम इनके रगो रेशे में उतर जाएगा। कासिद बहुत दिनों बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जवाब लेकर आ गया। जवाब हौसला अफजा था, अलबत्ता खलीफा ने जोर देकर लिखा था कि एहतियात लाजमी है। जो लोग दीन इस्लाम से बाहर है उन पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और एतमाद करना खतरे से खाली नहीं। खलीफा ने एहतियात के सिलसिले में लिखा कि जूलियन को किसी तरह आजमा लिया जाए